अध्याय 24 व्याख्या परिभाषा किसी भाव अथवा विचार के विवेचन अथवा विस्तार को व्याख्या कहते हैं। व्याख्या का ज्ञान। व्याख्या करना एक कला है। किसी भी व्याख्या योग्य मूल गद्यांश में निहित भाव विचार को संदर्भ सहित पूरी स्पष्टता के साथ सरल शब्दों में इस तरह अभिव्यक्त करना कि विषय वस्तु अच्छी तरह हमारी समझ में आए व्याख्या कहलाती है। संक्षेपण में जहाँ मूल गद्यांश को एक तिहाई शब्दों में संक्षिप्त करना होता है, वही व्याख्या में उसे अधिक सरल और स्पष्ट करने के लिए विस्तार करने की जरूरत पड़ती है। इस तरह हम देखते हैं कि संक्षेपण और व्याख्या दोनों मूलतः परस्पर विरोधी क्रियाएँ हैं। दोनों की अपनी स्वतंत्र महत्ता है और अपनी अलग विशेषताएं भी हैं। केवल गद्यांश की व्याख्या की जाती है, बात ऐसा नहीं है। पद्यांश की भी व्याख्या होती है। दोनों प्रकार की व्याख्याओं में बहुत सी समानताएं हैं तो बहुत कुछ विषमताएं भी। संप्रति यहाँ गद्यांश की व्याख्या पर ही प्रकाश डाला गया है। व्याख्या कैसे करें? आजकल कई तरह प्रतियोगियात्मक परीक्षाओं में हिंदी विषय में व्याख्या संबंधी प्रश्न भी दिए जाते हैं। व्याख्या में अच्छे अंक लाने के लिए परीक्षार्थियों को कई बातों पर ध्यान देने की जरूरत है जो निम्नलिखित है। पहला, दिए गए मूल गद्यांश को अच्छी तरह पढ़कर यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ का अंश है, अर्थात किस कहानी अथवा लेख आदि से लिया गया है। उसके बाद उसके लेखक का नाम और उसका संक्षिप्त साहित्यिक परिचय देना जानना जरूरी है। तीसरा, किसी भी रचना के व्याख्या के लिए जो अंश दिया जाता है, यदि वह अंश रचना के मध्य कहीं से लिया गया हो तो उसका उस रचना के पूर्व पर कुछ संबंध अवश्य रहता है। तात्पर्य यह है कि व्याख्या गद्यांश के पहले और पीछे संबंधित रचना में कुछ ऐसी बातें अवश्य रहती हैं जो उस पर प्रकाश डालती हैं तथा उसे और अधिक स्पष्ट करती हैं। फलतः व्याख्या करते समय संदर्भ के रूप में मूल गद्यांश के पूर्व की कुछ बातों का उल्लेख आवश्यक करना चाहिए ताकि मूल गद्यांश में निहित भाव अथवा विचार को व्याख्या के रूप में समझने में सरलता हो, बाद में उसे और अधिक स्पष्टता प्रदान करती है। अतः पूर्वापार तथ्यों की सहायता से सही रूप में व्याख्या की जा सकती है। चौथा, व्याख्या गद्यांश यदि किसी रचना का आरंभिक अंश है तो उसके बाद की पंक्तियाँ उस गद्यांश के मूल भाव को स्पष्ट करने में अवश्य सहायक होती है, इसलिए उसे व्याख्या करने में उसकी सहायता अवश्य लेनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि व्याख्या गद्यांश किसी रचना का अंतिम अंश हो तो वैसी स्थिति के संदर्भ के रूप में उसके पूर्व कुछ पंक्तियों की सहायता ली जानी चाहिए। इससे गद्यांश के मूल भाव को अच्छी तरह से अभिव्यक्त करने में सफलता मिलती है। पांचवा, मूल गद्यांश की व्याख्या करते समय उसके मूल भाव अथवा विचार को अच्छी तरह समझकर उसे सरल भाषा में अभिव्यक्त करना चाहिए। मूल भाव को स्पष्ट रूप करने के लिए यदि उदाहरणों की जरूरत पड़े तो यथासंभव उचित उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। यही नहीं, कभी कभी व्याख्या मूल गद्यांश में व्यर्थ अथवा भाव के कई धरातल होते हैं। व्याख्या में उन सभी धरातलों पर एक एक करके प्रकाश डालना चाहिए। इससे विषय वस्तु पूरी तरह इसे स्पष्ट हो जाती है। अंत में व्याख्या गद्यांश की भाषा शैली पर भी संक्षेप विचार किया जाना चाहिए। इस तरह किसी भी गद्यांश की उपयुक्त व्याख्या उल्लिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर की जाती है तो ऐसी व्याख्या अवश्य अच्छी समझी जाएगी। एक अवतरण, अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू ना निकला, उन्होंने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अवतरण की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियां शतरंज के खिलाड़ी शीर्षक के कहानी से ली गई है। दूसरा, इस कहानी के लेखक स्वनामध्य कथाकार प्रेमचंद्र हैं। हिंदी कहानी जगत में प्रेमचंद का उत्कृष्ट स्थान रहा है। इनकी कहानियों में वास्तविक जीवन की सच्चाई ही नहीं, समस्या का निदान भी रहता है और आदर्श भी। कुल मिलाकर प्रेमचंद की कहानियों में हमें आदर्श उन्मुख यथार्थ अथवा यथार्थोन्मुख आदर्श पाते हैं। वस्तुतः प्रेमचंद ने गगन विहारनी कथा लता को जीवन रूपी धरती पर उतारा है। प्रस्तुत व्याख्यात्मक पंक्तियों के माध्यम से कहानीकार प्रेमचंद ने न केवल मानव चरित्र की कमजोरियों पर प्रकाश डाला है, बल्कि उन पर तीक्ष्ण व्यंग भी किया है। विलासिता के दलदल में धंसा आदमी जब परिवार, समाज और देश के प्रति कर्तव्य विमुख हो उठता है, तब वह चारित्रिक पतन की किस गहराई तक नीचे उतरता है, कहानीकार ने उस बिंदु की ओर इशारा हमारा ध्यान खींचा है। नवाब वाजिद अली शाह के जमाने में लखनऊ का हर अमीर गरीब विलासिता के रंग में सराबोर हो उठा था। कहानी के दो प्रमुख पात्र मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली भी इससे अछूते नहीं थे। पैतृक जागीर होने से उन्हें किसी चीज़ की कमी थी ही नहीं, दोनों दोस्त ही नहीं, शतरंज के ऐसे खिलाड़ी भी थे कि सारी दुनिया में कब कहाँ क्या हो रहा है उन्हें कोई जानकारी ही नहीं रहती, और ना तो ये सब जानने की चाह फुर्सत परवाह ही उन्हीं थी। हर दिन सुबह से शाम तक वे शतरंज की दुनिया में खो जाते। शतरंज के खेल में किसी प्रकार की बाधा उन्हें पसंद नहीं थी। यही कारण था कि खेल पहले मिर्जा साहिब के यहाँ होता था, फिर मिर्जा साहिब के घर शुरू हुआ, और आखिर में कोलाहल से दूर सुनसान मस्जिद के खंडहर में होने लगा। वहाँ कोई बाधा नहीं थी। शतरंज तो खेल हर रोज होता था, कल सुबह से शाम हो जाती वे जान नहीं पाते। एक दिन दोनों दोस्त मस्जिद में शतरंज का खेल खेल रहे थे कि उन्हें अंग्रेज फौज के आने की आहट सुनाई दी। वे घबराए और छुपकर उसे देखते रहे। फौज आगे बढ़ी और थोड़ी देर बाद जब वह फौज उसी राह में लौटी, तब नवाज वाजिद अली को वह कैद कर ले जा रही थी। इस दृश्य को भी दोनों शतरंज प्रेमी दोस्तों ने अपनी आंखों से अच्छी तरह देखा, मगर इसकी उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वे फिर शतरंज के खेल में खो गए। देर तक खेलते रहे, अकस्मात खेल ही खेल में वे परस्पर ऐसे उलझे कि उलझते चले गए। तू तू और मैं से जब बात नहीं सुनी, तब दोनों ने कमरों में से तलवार निकाल ली। फिर क्या था, देखते ही दोनों वे कट मरे, तरफ तरफ कर दोनों में अपनी जानें दे दी। कहानीकार प्रेमचंद ने मानव चरित्र के इसी घिनौने पक्ष की ओर हमारा ध्यान आकर्षण किया है। उस पर व्यंग कसते हुए कहानीकार ने चिंता व्यक्त की है कि कहानीकार ने ठीक ही लिखा है कि अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू ना निकला, उन्होंने शतरंज के वजीर की रक्षा में अपने प्राण दे दिए। बात ऐसी नहीं थी कि मिर्जा साहब और मीर साहब कायर थे, उनमें व्यक्तित्व वीरता की कमी नहीं थी। कमी तो थी इस बात की थी कि उनमें राष्ट्रीय चेतना नहीं था, देशभक्ति की भावना नहीं रह गई थी, वे व्यक्तित्व संकीर्णता की भावना से जी जा रहे थे। यही कारण था कि शतरंज के निर्जीव बादशाह के लिए तो उन्होंने अपनी जानें सहज दे दी, मगर अपने देश के बादशाह के लिए बंदी बनाए जाने पर उनकी आंखों में से एक बूंद आंसू तक नहीं निकला। वे ही क्यों, सारा शहर बादशाह को बंदी बनाए जाने पर मूक दर्शक बना रहा। ना कोई हलचल हुई, ना मारकाट और ना एक बूंद खून बहा। राष्ट्रीय चरित्र का हाश, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि विलासिता हमारे जीवन की अकर्मण्यता लाती है, और अकर्मण्य व्यक्ति हर तरह के दायित्व से दूर भाग खड़ा रहता है, जिसका दुष्परिणाम एक दिन परिवार, समाज और राष्ट्र को भोगना पड़ता है। कहानीकार ने इसी सच्चाई को रेखांतरित करते हुए आम व्यक्ति के जीवन से विलुप्त हो रही राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है। प्रेमचंद की भाषा पत्रानुकूल होने के कारण सरल और स्वाभाविक होती है। व्याख्यात्मक पंक्तियों की भाषा भी अत्यंत सरल है, एक भी कठिन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। वैसे ही प्रेमचंद भाषा के प्रयोग में मंजे हुए कलाकार हैं। अध्याय 25, भाव पलवन अथवा भाव विस्तारण। उत्पत्ति और अर्थ। पलवन शब्द की उत्पत्ति पल्लव से हुई है, इसका अर्थ होता है नया पता निकलना। इसका भाव है विस्तार, इसे भाव संवर्धन भी कहा गया है। किसी गाद्यांश के भाव विस्तार को पलवन की संज्ञा दी गई है। पलवन संक्षेपण का विपरीत शब्द है। भाव पलवन के द्वारा किसी गाद्यांश को बोधगम्य बनाया जाता है। भाव पलवन के नियम। गाद्यांश के प्रमुख भाव को समझना चाहिए, प्रमुख भाव को समझने के बाद उसे विस्तार पूर्वक लिखना चाहिए। भाषा सरल, सरस और सुबोध होनी चाहिए, भाषा में मौलिकता होनी चाहिए। भाव पलवन करते समय भाव की सुस्पष्टता पर ध्यान देना चाहिए। भाव पलवन करते समय अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। पलवन करते समय अन्य पुरुष का प्रयोग करना नहीं चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी भाव पलवन। पहला, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वार ये। उल्लिखित पंक्ति हिंदी गद्य के जन्मदाता, हिंदी नाटकों के जनक, हिंदी साहित्य के इंदु भारतेंदु ने मुसलमान कवियों की हिंदी सेवा पर मुग्ध होकर लिखी थी। उनका हृदय मुसलमानों की सरस हिंदी कविताओं से ऐसा पलावित हुआ था, उनकी अमरवाणी ने भारतेंदु के हृदय पर ऐसी छाप बैठा दी थी और उनका मन मधु मुसलमानों के काव्य कमल पर इतना अनुरक्त हो गया था कि वे उल्लिखित पंक्तियों को स्वतः गुनगुना उठे। वास्तव में कवि को काव्य रचना का कर देता है, किंतु उसका रस सहृदय मधुप ही लिया जा सकता है। कवि करोति काव्यानि स्वादु जानन्ति पंडिता। कवि अपना हृदय कमल सहस्त्र मधुपों के लिए विकसित कर देता है, किंतु हीरे के लिए जौहरी की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा नकली पत्थर और अमूल्य हीरा एक ही घाट उतर जाते हैं। मुसलमानी हिंदी कविता में जौहरी की कमी नहीं थी, उसे पा जाने की आवश्यकता थी। इस प्रकार भारतेंदु के रूप में पहला जौहरी प्रकट हुआ। गुण न हीरानु गुण ग्राहक हीरानु है के अनुसार कवि की अपनी कृति का सच्चा समालोचक न प्राप्त होने का अपार दुख होता है। भारतेंदु ने उल्लिखित प्रशंसा से मुसलमान कवियों के काव्य की प्रशंसा के साथ अपनी भी गुण ग्राहकता का परिचय दिया है। यद्यपि हिंदी और उर्दू का पुराना भेद पुराना है, दो जातियों के हृदय में भी भेद था तथा अनेक मुसलमान कवियों ने ब्रिज, अवधि अथवा खड़ी बोली, इन तीनों तरह की भाषाओं में हमारी हिंदी का अलंकरण किया। यही नहीं, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि ही मुसलमान था, हमारा अभिप्राय अमीर खुसरो से है। कथानक कहानी का प्राण होता है। कथानक का संबंध जीवन और गंभीर विवेचना से होता है, जीवन के प्रत्येक व्यवहार से होता है। कला का जितना ही उच्च कोटि का होता है, उसका विषय जीवन के व्यवहारों और जीवन के कठिन समस्याओं से होगा। जीवन के अनुभवों को लेकर युक्तिपूर्ण रचना का नाम ही कथानक का निर्माण है। यहाँ लेखक के लिए एक समस्या और उसका निराकरण अनिवार्य है। जब घटनाएं श्रृंखलित होकर मुख्य घटना का मार्ग प्रदर्शन करती है, बाधा को निर्विघ्न कर देना अथवा आपत्ति पर विजय पा लेना ही चरित्र सौंदर्य है। हॉकिंस के कथन अनुसार, लेट्स योर कैरेक्टर फॉल इन द डिफिकल्ट देन यू वर्ड्स एक्सरसाइज हिम। कहानी का आरंभ यथासंभव तीव्रतम स्थिति अथवा मर्म परसी स्थल के निकट ही करें। मर्म परसी स्थल यदि आरंभ से अधिक दूर हो जाते हैं तो कहानी में स्थिरता आ जाती है। कहानी लिखने के लिए अनेक ढंग होते हैं। यह कहीं लेखक पत्रों से कथनोपन कराकर स्वयं सुनता है, कहीं कहीं प्रथम पुरुष में लिखता है, कहीं पत्रों का आश्रय लिया जाता है तो कहीं डायरी का। चरित्र प्रधान अथवा वातावरण प्रधान कहानियों में प्रवाह की गति मंद रहती है। सुगतम गति का प्रयोग कथानक प्रधान कहानियों में है। पात्र से सदा वही कार्य कराना चाहिए जिससे उसकी आशा की जाती है अथवा जिससे वह सर्वथा योग्य हो। नवीनता, विचरता अथवा आश्चर्य तत्व का ऐसा मिश्रण होना चाहिए जिसमें पात्र का कार्य अपने ही ढंग का प्रतीत हो, किसी के अनुकरण की गंध न आए। हाँ, प्रकट के समय पात्र उस सीमा का कोई कार्य आरंभ करना चाहिए जो उसकी और पाठक की आशा अथवा अनुमान के प्रतिकूल हो। कला जीवन का दर्पण है। इसके अनुसार मानव जीवन और विश्व में घृणित, अश्लील, अपवित्र और दूषित है। इसका यथार्थ चित्रण भी कला है, किंतु प्रकृतिवादी की आर में अपनी मलिन वृत्ति को व्यक्त कर साहित्य की दूषित करने का उपक्रम करना उचित नहीं। आज भी चॉकलेट सरीखी पुस्तकों के समर्थक हैं। अंध परंपरा के कारण यही है कि लेखक स्तः कला कलानुकरण के भेद को नहीं समझता। कला का प्रभाव उत्पादकता, व्यक्तित्व प्रसाद और सहृदयता, इन तीन बातों पर निर्भर है। मानव जीवन का परम ध्येय विश्व आत्मा से मिलन अथवा अनंत से सानंत का अवसान है। कला अपना उद्देश्य स्वयं है, उसका लक्ष्य असीम है, उसे आप बांध नहीं सकते। वह स्वच्छंद और स्वतंत्र है, घृणित से घृणित विषय में भी उसे आप बांध नहीं सकते। अपनी इसी भावना के बल पर कला मनुष्य मात्र की सीमाओं में बंध नहीं सकता। फिर भी कला का फल सदैव कल्याणमय है और शिव है। कला यथार्थ का मौलिक चित्रण है, यथार्थ सत्य है और सत्य सदैव सुंदर है। इसलिए कहा गया है कि कला सौंदर्य की सृष्टि करती है तथा हमें अलौकिक आनंद प्रदान करती है। कला कला के लिए। 18वीं सदी में कला की विशेषता स्थापित हुई और 19वीं शताब्दी में कला कला के लिए सिद्धांत प्रचारित हुआ। जब उपयोगी कला और ललित कला के बीच एक विभाजक रेखा खींची गई, इस भांति कला का संबंध क्रमशः सौंदर्य भावना के समीप आता गया और वह धीरे धीरे एकमात्र ललित भावमूलक निर्धारित हुआ। कला के विकास के में जब उपयोग की भावना का आधिपत्य हुआ, तभी से कला सौंदर्य भावना ने विद्रोह किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में व्यवसाय के लिए कला का प्रयोग होने लगा तथा कला एक कला के लिए सिद्धांत वायुमंडल में गूंजा और यह समझा गया कि कला का अस्तित्व केवल अपने लिए है, मानव की रागात्मक भावना के परितोष अतिरिक्त उसका दूसरा ध्येय नहीं है। इस दृष्टि को अपने समक्ष रखते हुए यह स्पष्ट किया जा सकता है कि कला के पक्ष में क्या सुंदर है और क्या असुंदर। यह सुंदरता का संबंध है वह कला के लिए अनिवार्य है और रस में स्थायी भाव की तरह यह आदि से अंत तक विद्यमान है। यह सुंदरता दो प्रकार की है, बाहरी और आंतरिक। यो तो सुंदरता का संबंध एकमात्र मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति से है, जिसमें उसकी मानसिक प्रक्रिया सुख और संतोष के सम्मिलित भाव बिंदु पर जाकर समाप्त होती है। बाहरी परिस्थितियाँ इंद्रियों को स्पर्श करती हैं, इंद्रियाँ जैसे एक नवीन आलोक से जगमगा उठती हैं। यह जगमगाहट यदि इंद्रियों तक सीमित रही गई और उसका प्रतिफलन मन की मादकता में ही रह गया तो यह कला बाहरी सौंदर्य में सीमित सामान्य कोटि की समझी जाएगी। यदि बाहरी परिस्थितियों में उत्पन्न मानसिक प्रक्रिया इंद्रियों को पार कर मनुष्य के अंतकरण को जगमगा चक सकी और उसकी समस्त भावनाएं परिस्थितियों का परिधि से उठकर किसी दिव्य आनंद से लीन हो सकी तो यह उत्कृष्ट कोटि की कलात्मक अनुभूति होगी जो भीतरी सौंदर्य से उत्पन्न है, चाहे वह कला काव्य हुए हो अथवा संगीत में, चित्र में अथवा मूर्ति में। केवल मनोरंजन न कवि का ही कर्म होना चाहिए, उसे उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। एक विद्वान ने सत्य ही लिखा है, आर्ट इज ए एक्सप्रेशन ऑफ आर्टिस्ट मूड, नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फैक्ट। मनोरंजन ही कला का अकेला कार्य नहीं, जो एक के लिए मनोरंजन है वह दूसरा के लिए नीरस हो सकता है। रुचि भिन्नता के कारण मनोरंजन के अनेक भेद हैं, अतः कला का उद्देश्य मात्र मनोरंजन स्वीकार करना, उसे वैश्या का पद प्रदान करना है। इस कसाघात से इसका पतन और दुर्दशा निश्चित है। शिक्षा और प्रचार को पात्रों के चरित्र चित्रण द्वारा ही चरितार्थ कराया जाना चाहिए। पृथक पृथक रूप में उपदेश देना कलाकार की मर्यादा के प्रतिकूल है। कला जीवन की सरस व्याख्या है, अतः इसमें जीवन उपयोगी तत्वों का समावेश वांछनीय है। कोई भी वस्तु काव्य का उद्देश्य हो सकती है, प्रत्येक वस्तु कला पर निर्भर है। कला का नकेल बंधन और हथखड़ी से क्या सरोकार है, वह तो हमें विशाल मनोहर उपवन में ले जाकर छोड़ देती है, जहाँ किसी भी फल को खाने का निषेध नहीं और कह देती है जी भर के स्वच्छंद विचरो, स्थान और समय तो उसी के आधिपत्य में है। कला के असीमित क्षेत्र का छोर मिलना विक्टर हुमियो के अनुसार असंभव है। कुछ कलावादियों के अनुसार कला का साम्राज्य सीमित हो अथवा असीमित, श्रृंखला ही कदापि नहीं। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर बह जाए। घर के भेदी विभीषण ने लंका को जब ढा दिया, तब भी घर का भेदी लंका ढाता रहा। महाभारत का युद्ध इसी पारंपरिक कलहफूट अथवा ईर्ष्या के कारण हुआ, फलस्वरूप भारतवर्ष के श्रेष्ठम योद्धा और विद्वान उसमें समर्पित हो गए। बाली को सुग्रीव ने ही भाई होते ही मरवा दिया। अभागे भारत की मिट्टी में भी ना जाने क्या असर है कि भाई भाई से कंधा मिलाकर नहीं चल सकता। यहाँ मनुष्य और इंसान तक में भेद है, प्रेम और मोहब्बत करने वाले में भेद है। यहाँ के निवासी तो त्यागपत्र देने वालों से घृणा करते हैं, चाहे फिर इस्तीफा ही क्यों ना देना पड़े। यदि इस देश के रहने वाले दुर्जन और खराब इंसान से घृणा के भेद को छोड़ दें तो भिन्न भिन्न होते हुए भी एक हो जाएं। भारत के लिए चर्मोक्रस का स्वर्णिम प्रभात दूर ना होगा। एक देश के रहने वालों ने व्यर्थ के लिए कैंप बना रखे हैं। यदि भारत की उन्नति करनी है तो भेद को अभेद की गोद में बैठना होगा, अछूत कहकर दुत्कारे जाने वाले साथ लेना होगा, दास्ता की रात्रि को विदीन करना होगा, तभी वास्तविक स्वतंत्रता के सूर्य का उदय भारतीय क्षितिज पर सर्वत प्रभात होगा। चरित्र गठन में सबसे प्रथम ब्रह्मचारी वत्र का पालन। यह सूक्ति सर्वकालीन सत्य है, इफ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज द लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। वीर रक्षा के अनूठे नियमों का पालन चरित्र का नींव है। पितामह हमारे यहाँ सबसे बड़ी उपाधि है जो आज तक दो ही को प्राप्त हो सकी है। पितामह या ब्रह्मा के लिए प्रयुक्त होता है अथवा भीष्म पितामह के लिए। एक ब्रह्मचार्य ही ब्रह्मा की समता कर सका। इसी ब्रह्मचार्य के बल पर देवताओं ने मृत्यु को जीता और इसी के बल पर भीष्म पितामह ने भी मृत्यु पर विजय प्राप्त की। ओज, बल, साहस, बुद्धि, धैर्य, कांति, सुंदरता सब कुछ यही है। कभी मन में ही विषयों का चिंतन ना करें, अश्लील गीतों से दूर रहें, उपवास करने की आदत ना डालें, गुप्त स्थान में छुपकर किसी कन्या का दर्शन ना करें, एकांत में संभाषण ना करें, वासनाओं के लिए किसी संकल्प ना करें, ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए नियमित आहार द्वारा उल्लिखित नियमों का पालन करें। नित्य व्यायाम करने वाला तथा ईश्वर में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति ही संसार में सफल होता है। जो बाहर से तो विषयों का त्याग किए रहता है किंतु मन में उनका चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य श्री भगवद गीता के अनुसार मिथ्याचारी है। तेजस्वी मनुष्य जिस कार्य में हाथ डालता है उसी में सफल होता है। अजन्ना पुत्र हनुमान, अभिमन्यु और लक्ष्मण की वीरता के उदाहरण इसके प्रमाण है। जन्म भर भी ब्रह्मचारी ना रही है, यदि कोई मनुष्य वर्तमान युग में मात्र 18 वर्ष तक ही मनसा वाचा कर्मा नाम ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर ले तो वह संसार में सदैव के लिए आदर्श बन सकता है, किंतु हमारे वर्तमान समाज में इसके लिए उपयुक्त उदाहरण नहीं। माता पिता तथा गुरु बच्चों के खान पान तथा आचार विचार पर ध्यान नहीं देते। पहले आचरण की शिक्षा देने वाले ही आचार्य अथवा गुरु बन सकता है। माता पिता जानबूझकर बच्चों को मिर्च खटाई मसालों का सेवन कराते हैं, फैशन का उन्हें दास बना देते हैं और उन्हें कभी यह नहीं समझाते कि जीवन मार्ग कितना कंटा कर्णिन है जिससे उन्हें सदा बचकर रहना चाहिए। जननी जन्म भूमि सच्य सर्व गर्मादित्य गरियसी, सत्य जन्म भूमि हमारी माता है, वह हमें उसी वात्सल्य भाव से पालती पोसती है जिस भाव से जननी। उसका गौरव स्वर्ग से भी अधिक गरिमापूर्ण है। प्रत्येक देश के मनुष्य अपनी जन्मभूमि की पूजा करते हैं, उसे महत्वपूर्ण और गौरव प्रदान करते हैं। अंग्रेजी एक कवि ने कहा, देश सेवा अपने ही भाइयों की सेवा है, जिसकी जन्मभूमि का मान रहेगा उसे भाइयों का सदा ध्यान रहेगा के अनुसार देश सेवा में हमें भ्रातृत्व संगठन अथवा देश प्रेम की भावना से भर देती है। इस काट का कथन खुले शब्दों में कह रहा है, कोई क्या ऐसा भी मनुष्य है जिसकी आत्मा इतनी मर गई है कि उसने यह कभी नहीं कहा होगा, यह मेरा उपदेश है। आज वंदे मातरम भारत के प्रत्येक व्यक्ति की जीहा पर है। सस्य श्यामला उर्वरा मातृभूमि के यशोगान से किसका हर कमल विकसित नहीं होता। यदि माता हमें 9 महीने गर्भ में धारण करती है तो जन्मभूमि हमें जीवन भर धारण करती है। माता अपना दूध पिलाकर हमारा पोषण करती है तो मातृभूमि अन्न जल से हमारा लालन पालन करती है। जननी अपनी शिक्षा से हमें मनुष्य बनाती है तो जन्मभूमि हमें अनेक संस्कारों से हमें हमारा वास्तविक स्वरूप प्रदान करती है। यही नहीं, जन्मभूमि तो जगत जननी होने के कारण माता से भी अधिक गौरवशालिनी है। स्वर्ग उसकी समता कहाँ कर सकता है। स्वर्ग हमारे लिए केवल कल्पना है, आकाश में उड़ने वाली कोयला की तान का कोई स्वरूप तब हम निश्चित नहीं कर सकते। नंदनवन के परिजात का सौरभ बैठा रखने की वस्तु नहीं, आकाश के उज्जवल तारों का सौंदर्य केवल देखने का वस्तु है। यह कुसवत कोमल है अथवा वज्रवत कठोर, कौन कह सकता है। हमारी कोमल कल्पना जहाँ सुखद नीर बनाकर निवास करने लगी है वहाँ तो स्वर्ग है। मातृभूमि हमारा जीता जाता प्रत्यक्ष स्वर्ग है। देवता भी स्वर्ग को त्याग कर यहाँ जन्म धारण करने की अभिलाषा करते हैं। जातियों के उत्थान पतन का कारण उनका संघर्षण। संसार भर के इतिहास में कोई भी ऐसी जाति नहीं जिसने अपनी शक्ति अक्षुण रखी हो अथवा उत्थान पतन के ऊंचे नीचे स्वाभाविक झूले में ना झूली हो। उन्नति की चरम सीमा तक पहुंचकर सभी का अर्धपतन हुआ है। स्वयं मार्तंड भी इस चक्र से ना बच पाए। मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में, उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता नहीं जो व्योम में, गिरता नहीं वही मार्तंड है। चिंता नहीं जो व्योम में, विस्तृत चंद्रिका का हास हो। चिंता तो सब है जो उनका फिर नवीन विकास हो। प्राचीन मिस्र का गौरव आज उसके ध्वंस वेशों में पड़ा हुआ सिर धुन रहा है। ग्रीक की विश्व विजयनी शक्ति आज कथा मात्र रह गई है। रोम का साम्राज्य अब स्मरण करने की वस्तु रह गया है। कभी भारत की ऊर्जा शक्ति थी, अब भारतीय आर्य जाति की गौरव गाथा उसके प्राचीन साहित्य में ही विद्यमान है। स्वर्ग की चिड़िया धना भारत भूमि आज निर्धन है। सस्य श्यामाला उर्वर भूमि आज बिहार वन और रेगिस्तान है। अब उसे ही अपने अस्तित्व की चिंता है। आजकल यूरोपीय जातियों का प्राधान्य है, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि उनका अभ्युदय चिरस्थायी है, अनेक जातियों का अब कोई भी अस्तित्व नहीं। उसके उत्थान पतन के इतिहास में हम कार्यकरण का कुछ विलक्षण संबंध पाते हैं। कार्य का उद्देश्य कुछ था और परिणाम कुछ दूसरा हुआ। धर्म की उन्नति के लिए जो आंदोलन हुआ उसका फल हुआ एक प्रबल जाति की सृष्टि। जाति उठी तो सतपथ प्रदर्शन के लिए, किंतु स्वयं विपथ गामी हो गई। वह स्वयं अपने नाश का कारण बन गई। जाति की उन्नत अवस्था में उसके पराभव के कारण उत्पन्न हुए और जाति की दुरावस्था में उसकी उन्नति के साधन प्रस्तुत हुए। किंतु उत्थान पतन को हम कालचक्र का परिणाम मात्र नहीं मान सकते। जातियों का भविष्य बहुत कुछ उन्हीं के हाथ में रहता है। मनुष्य अपना ही सबसे बड़ा मित्र और शत्रु रहता है। दो चून के भी बुरे होते हैं। हम छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, यह नहीं विचार करते कि आज का पर्वत कल के रन कणों से बना है। जिस लहराते सागर को हम उताल तरंगे मानते देखते हैं, वह एक एक जल की बूंद का परिणाम है। एक बूढ़े पिता ने मरते समय अपने सभी लड़ाकू पुत्रों को बुलाकर एक सूत का अटिया द्वारा सदुपदेश सिखा दिया था। एक एक धागे तो वे तोड़ सकते थे, किंतु पूरी अटिया पर सभी बल तोल देने पर उनकी असफलता ने उनकी आंखें खोल दी। छोटे छोटे तिनके व्यर्थ ही निकले, किंतु जब उन्हीं को मिलाकर एक रस्सी बट ली जाती है तब उसमें बड़े बड़े मत गयंद बांध लिए जाते हैं। किंतु हम इन सारी सच्चाइयों को जानकर भी अनजान बैठे हैं। 11वां, मानव जीवन एक पहेली है। विज्ञान के लिए हड्डियों का ढांचा और मिट्टी का पुतला मनुष्य साहित्य के प्रांगण में अपना सुंदर सुखम रहित नृत्य दिखाता हुआ आदिम काल से चला हुआ आ रहा है। अपने जैसे रूप वालों के लिए सुलझाने की वस्तु हो गया है, किंतु स्वजातियों ने इतना ही सुलझा पाया है कि जीवन एक पहेली है। यही पहेली जब पहली बार आदि कवि के सामने आई तो उसने जिस स्वरूप को धारण किया वह साहित्य प्रेमियों से छुपा नहीं है। यही पहेली जब अंधे होमर के सम्मुख उपस्थित हुई तब उसने हेले का रूप धारण किया। जब पदलित दांते ने इसी पहेली के फेर में अपने को पाया तब उन्होंने वैट्रिस की कल्पना की। शेक्सपियर ने डेमोना और हेमलेट जैसे चरित्रों की रचनाएं की। यही पहेली जीवन से प्राप्त अनुभूतियों का साहित्यिक रूप है। यही पहेली अथवा अनुभूति साहित्य की जननी है। वैज्ञानिक इसे हल नहीं कर सकते। यदि उन्हें ताली भी ना दी जाए तो बिना ताला खोले कुंजी को इस द्वार पर लटका कर चले जाएंगे। प्रत्येक अनुभूति काव्य नहीं है, वह भाव प्रेरित है। मस्तिष्क प्रेरित उक्तियाँ तो विज्ञान के विषय हैं। राष्ट्र से भरकर धर्म नहीं। आज घृणा कुंठा प्रांतीयता दलगत ओछी राजनीति भाषाई विवाद सांप्रदायिक उपद्रव श्रमिक और कर्मचारी असंतोष आक्रोश अत्याचार व्यवहार कदाचार इत्यादि की क्रूर अमानवीय प्रवृत्ति से देश की छवि विकृत हो गई है। और राजनीति उस श्रृंखला अलोकतांत्रिक अनुशासनहीनता और चारित्रिक पतन से देश खोखला हो गया है। सांस्कृतिक लगाव देशभक्ति राष्ट्र प्रेम सूखा सा हो गया है। और करेला वह नीम का चढ़ा धर्म निरपेक्षता की आड़ में देश और देशवासी धर्म विहीन होते जा रहे हैं। यह सत्य है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। सत्य यह भी है कि धर्म निरपेक्षता राजनीतिकों के क्षेत्रों में राष्ट्रीय अखंडता के धरातल पर धर्म निरपेक्षता की होती है, किंतु धर्म रक्षा के क्षेत्र में यह सापेक्ष होती है, क्योंकि मानव के आध्यात्मिक जगत में धर्म की वही प्रकृति है जिसे उच्चानुभूति से संपन्न जीवन की प्रेरणा प्राप्त हो जाता है। अतः धर्म अपने आप में एक वरदान है, कल्याणकारी पथ है तथा जीवन का श्रेय और प्रेय है। धर्म संजीवनी का मूल है। अतः धर्म का परित्याग धर्म विसमरण अथवा धर्मांतर मानव जीवन की राष्ट्रीय जीवन के लिए विघटनकारी विनाशकारी और नरक यातनाओं के द्वार बन जाता है। धर्म की राष्ट्रीयता से सीधा संबंध है। राष्ट्रीयता की पुष्टि करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, वास्तव में जितने व्यक्ति होते हैं उतने ही उनके धर्म होते हैं, किंतु उनमें राष्ट्रीयता की भावना होती है, एक दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते। हम यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि राष्ट्रीयता किसी भी राष्ट्र के निवासियों को एकता में बांधने वाला एक अपूर्व अलौकिक और भावात्मक शक्ति होती है, जिनमें व्यक्ति निजी हित और स्वार्थ से उठकर लोक मंगल राष्ट्र कल्याण की भावना से प्रेरित त्याग परोपकार और राष्ट्र निर्माण में जुट जाता है। राष्ट्रीयता दिलो दिमाग में एकता अनुरूपता उत्पन्न करने का एक उत्कृष्ट साधन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार अनुसार जिसके अंतर्गत जनता के हृदय में एकता, संगठन और सशक्ति की भावना, एक समान नागरिकता की अनुभूति तथा राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना का विकास आ जाता है, इसलिए हम धर्मांतरण को राष्ट्रद्रोह अथवा देशद्रोह कहते हैं। धर्मांतरण का सीधा संबंध राष्ट्रीयता से है, देश प्रेम से है और देशभक्ति से है। लोक कल्याण की दृष्टि से राष्ट्रीयता का स्थान और आशय देश प्रेम से अधिक देशभक्ति की अभिव्यंजित करता है। स्वयं की जन्मभूमि जहाँ उसके समजातीय रहते हैं, किंतु उसके विपरीत राष्ट्रीयता में जाति, भाषा, परंपराओं, संस्कृतियों के साथ साथ एक निश्चित भौगोलिक सीमा में रहने वाले विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, संस्कृतियों और समुदाय को समर्थकों को एकता सूत्र में बांधती है। विनय सबसे बड़ी सुंदरता है। संसार में सब मनुष्य बड़े सुंदर नहीं होते, वह उनके वश में नहीं। हाँ, मनुष्य चाहे तो अपने ही विनयपूर्ण स्वभाव से सुंदर और सुंदरतार से सुंदरतम बन सकता है। कोमल स्वभाव नीलम पर धूप का काम करता है, सुंदरता में चार चांद लगा देता है, सोने में सुगंध हो जाती है। एक अंग्रेज विद्वान का कथन कितना तर्कसंगत है। ऑल कैन नॉट बी ब्यूटीफुल बट दे कैन बी स्वीट टेम्पर एंड ए स्वीट टेम्पर गिव्स लवलीनेस टू द फेस मोर अट्रैक्टिव इन द लॉन्ग रन एंड देन एवन ब्यूटी। हैव ए स्माइल एंड काइंड वर्ड ऑफ ऑल एंड यू विल सून एम बी मोर एडमिड मी लर्ड देन एनी मोर ब्यूटी। ए स्वीट टेम्पर इज टू हाउस होल्ड वर्ड सनशाइन इज द थ्री एंड फ्लावर्स। ईश्वर ने मनुष्य की विनम्रता के लिए सृजन किया। मनुष्य मात्र से प्रेम का व्यवहार करना सृष्टि का सौंदर्य है। एक भाई दूसरे भाई की ओर क्रोध से लाल नेत्रों किए हुए मुट्ठी बांधे हुए दांत पीस कर देखता रहे, यह कभी रचयिता का उद्देश्य न था। शांत कोमल प्रकृति रजत से औष्करण लेकर जब छित्रा देती है, रजनीश अपनी शीतलता चंद्रिका से जब विश्व भर का कलेजा शांत कर देता है, अमृत वारिधारा से आप सबको सींचा जाता है, रजत कलदल विनादी झरने जब विश्व में दया का संचार करते हैं, तब मानव दानव बना दूसरों का रक्त बहाकर सरिता का स्वच्छ जल लाल कर दे, यह सृष्टि का उद्देश्य कहीं से उचित कहा जाता है। विपत्ति ही सदाचार की कसौटी है। प्रकृति दुख सुख की समिष्ट है। आनंद और दुख अन्य आश्रय हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। दुख के बिना सुख तथा सुख के बिना दुख का अनुभव होना मृग मृचिका है। खरहे से सिंगों की आशा करना आकाश कुसुमवत है। इसी प्रकार उन्नति अवनति, अंधकार आलोक, प्रकाश ज्ञान अज्ञानी आदि भी सापेक्षक है। यदि एक गाल पर चपत मारने वाला ना हो तो दूसरे गाल को भी फेरने का महत्व ही किस प्रकार होगा। हिंसकों के समक्ष ही गांधी की अहिंसा शोभा है। इस सापेक्षित्व के साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु अपनी उत्पादकता रखती है, प्रत्येक बुराई में भी भलाई छुपी रहती है। तभी तो कहा गया है, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, देयर इज ए सेम गुड हिडन इन एवरी इविल। विज्ञान का संबंध मनुष्य के मस्तिष्क में है। विज्ञान का ढोल मस्तिष्क के डंडे से बोलता है और साहित्य की कलिका का विकास हृदय की वायु से होता है। विज्ञान का संबंध भौतिक पदार्थों से है। कविताओं अथवा साहित्य का क्षेत्र अंतर जगत है। विज्ञान पदार्थों को सहेतुक व्याख्या करता है और साहित्य उन सब का सौंदर्य युक्त प्रभाव मानव हृदय पर डालता है। विज्ञान का सत्य साहित्य के सत्य से भिन्न है। विज्ञान में एक और दो होते हैं जबकि साहित्य में 11 हो जाते हैं। वैज्ञानिक पुष्पों की पंखुड़ियाँ तोड़ डालता है, उसके पराग और पंखुड़ियों की सहेतु व्याख्या कर डालता है। साहित्य पुष्प के विकास और मलानता के से जीवन के विकास और विनाश का मनोहर संबंध जोड़ता है। विज्ञान मनुष्य को सभ्यता की सीढ़ी पर चढ़ाता है और साहित्य उसे मानवता के उच्च शिखर पर। विज्ञान हमारी भौतिक उन्नति के संबंध रखता है और साहित्य आध्यात्मिक उन्नति से। एक ऐहिक है तो दूसरा पारलौकिक। विज्ञान ईश्वर तथा धर्म से हमारी निष्ठा हटा देता है। कविता हमें धर्म प्राण बनाती है। साहित्य सृष्टि का सत्य स्वप्न, मानवता का मानचित्र तथा देश का दर्शनीय दर्पण है। वहीं विज्ञान वस्तु विज्ञता की वास्तविकता का ढांचा है। दोनों का ही संबंध मानव जीवन के विकास से है। विज्ञान हमारे विकास की व्याख्या करता है, हमें वानर से मनुष्य बनाता है, पशु पक्षी से भिन्न कर हमें प्रकृति से दूर हटाता है। साहित्य से हमारा संबंध प्रकृति तथा पशु जगत से स्थापित करता है। शकुंतला की विदाई पर मृग छौना ही नहीं रोया, लताओं ने भी पीले पीले पत्तू अंशरु के रूप में गिराए। सुर की गायें कृष्ण वियोग में इन भावों को प्रदर्शित करती रहीं। जहां जहां गोदोहन किन्हो सुंगती सोई ठाए, प्रति पछार खाए छिन ही छिन करम दुखारी गाय। 17. सरस कबीन के हृदय को बेधत है सो कौन, असमझवार सराई बो समझवार को मौन। आलोचना द्वारा साहित्य की और सर्वसाधारण की दृष्टि विशेष प्रकार से आकर्षित हो जाती है। जो मनुष्य कार्यांतर और आलस्य आदि वह साहित्य विनोद के लिए बहुत कम समय निकाल सकते हैं, वे भी समालोच्य साहित्य में लीन दिखते हैं। गुण दोष विवेचना में स्वाभाविक गुण है कि उस और सर्वसाधारण का चीज स्वभावतः अधिक खींचता है। जब प्राचीन साहित्य का भी आलोचना द्वारा अधिक प्रचार हो जाता है, तब नव साहित्य का तो कहना ही क्या है। आज विद्वान लेखकों की मार्मिक दुख रहता है कि उनकी शक्ति को सुनने वाला कोई नहीं। साहित्यिक रसिक चंद्र सुविज्ञों की कृतिज्ञ रूप कमलिनी का दर्शन सुख प्राप्त नहीं कर सकते और वह कृति कमलिनी गुणग्राही सहदर्दों के सम्मुख होने से वंचित हो रह जाती है। इस अभाव को मिटाकर साहित्य सौरभ को सर्वत्र प्रचारिका परिचिका आदि कोई भी समालोचना है, अपने परिश्रम का फल योग की दृष्टि से न आने का दुख दोष श्रवण के दुख से कहीं बढ़कर है। सुर सुर तुलसी शशि उडगन केशव दास उल्लिखित सुक्ति यमक के चमत्कार विधान द्वारा सूरदास को हिंदी साहित्यकाश के सूर्य और तथा तुलसी के चंद्रमा का स्थान प्रदान करता है और केशव को उसका एक तारा मात्र है। राशि शांति है, शीतल है, सूर्य उष्ण है, सतह सर्वत्र व्यापक है। विश्व के कोने कोने से अंधकार कदलित कर देने वाला सूर्य की कविता भी शशि के समान सुखद शीतल और त्रिविध ज्वाला हरण है। तुलसी की कविता सूर्य की भांति जीवन के कोने कोने का स्पर्श करने वाली है। सूर्यवंशी सूर्य राम के चरित्र की किरणों का व्यापक प्रभाव डालने वाली है। चंद्रमा को देखकर समुद्र में तरंगे उठने लगती हैं, हर्ष की हिलोरे उमड़ने लगती हैं। सूर्य की कविता भी आनंदमयी है, रजतमयी और शोभामयी होने के कारण हिंदी संसार सागर को आनंदित करने वाली है। रजनी शयी है, घटने बढ़ने वाला है, यह आधे मान संसार उज्याला रख सकता है। इसी प्रकार सूर्य की कविता की जीवन का एक पक्ष ध्येय है, जीवन की संपूर्ण व्याख्या नहीं। सरसता और आनंद यहाँ जीवन में आवश्यक है और वहाँ गंभीर दृश्य का विसूर कृष्णचंद्र के साथ स्वयं भी हिंदी साहित्यकाश के चंद्र बन गए हैं। कृष्णचंद्र के मुख चंद्र का मनोहरी वर्णन करने में उन्होंने अपनी प्रतिभा का सुपरिचय दिया है। सिंगार की मन मोहिनी बांकी झांकी का प्रदर्शन अथवा वात्सल्य का चित्रण भी इन्हें भा गया है। केवल सिंगार और वात्सल्य संपूर्ण जीवन नहीं, इनके अतिरिक्त जो कुछ शेष रहता है वह सुर की कविता का विषय नहीं। सुर छोटे से घेरे में सीमित रहे, जीवन की लंबी दौड़ ना लगा सके। हाँ, अपने परिमित क्षेत्र में जितनी तीव्र दौड़ सुर लगा सके उतनी स्वयं तुलसी भी नहीं, किंतु तुलसी को जीवन के पूरे मीलों वाले घेरे की दौड़ लगानी थी, सुर की भांति केवल 100 गज की नहीं। गोस्वामी तुलसीदास का क्षेत्र विस्तृत और सदैव प्रकाशित है, सुर का संकुचित था यत्र तत्र तथा यदा सदा आलोकमय, अतः सुर वससी और सुर तुलसी रवि है। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। आज विश्व अशांत है, चहू और हाहाकार है, दो भीष्म युद्ध हो चुके हैं, तीसरा सिर पर मंडरा रहा है, दानवता का नंगा नाच हो रहा है। ये सब किस लिए है? इसका कारण है कि हम अपने पूर्वजों के मार्ग से भटक गए हैं। यह अशांति, अन्याय, अनाचार, अनैतिकता तथा भ्रष्टाचार पूर्वजों के मार्ग पर चलने से ही दूर हो सकता है। आज के विषमताओं से भरे युग की व्यक्ति सुखी अथवा दुखी है? आप यह प्रश्न किसी भी श्रेणी के व्यक्ति से करके देख लीजिए, उत्तर सभी का एक होगा। आज का व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी होगा। वास्तव में सुख और दुख का यह प्रश्न बेमानी सा लग रहा है और दुख इसका प्रमुख कारण है। हमारे समाज में बढ़ते हुए अत्याचार विषमता की अग्नि चारों ओर धधकने की अवस्था में आ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव समानता युगों के किसी कोने में जाकर सो गई है। आज हम व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक समस्याओं ने निरीह और असहाय बना दिया है। आज समाज में अत्याचार निरंतर बढ़ने चला है। इन सभी का मूल कारण है मानव की नैतिकता का पतन, मानव दुराचार की ओर प्रवृत्त है। होती नहीं प्रीत में भीति, मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, होती नहीं प्रीत में भीति, किंतु कहना चाहिए होती नहीं बिना भय प्रीति। प्रेम यद्यपि हृदय की कोमलतम वृत्ति है तथापि उसमें स्थायी रखने के लिए भय जैसे भयंकर भाव की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी विद्वानों को भी सम्मितियाँ विधोरात्मक हैं। यदि एक विद्वान कहता है वेयर लिटल डव्स आर फेयर ग्रेट लव्स इज देयर, तो दूसरा कहता है लव्स नो फोर फियर। मालिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियों का विवेक का भय छुपा हुआ है, तभी तो वे कहते हैं दुख सो प्रीतम भेंट के सुख सो होए न कोय, यही ठाव मन डर पे बहुरी न बिछड़न होए। सदा न प्रीतम की राहू काहू के गलबाह, चलती फिरती रहत है कहीं धूप कहीं छा। भय के बिना प्रेम प्रयोधि में प्रेमामृत का वर्षा नहीं होती, आनंद के बुलबुले नहीं उठते। सच्ची प्रेम प्रत्येक छोटे तथा बूढ़े बुदबुद में अपने ही पाकर प्रेम की वास्तविकता जानते हैं। प्रेम वह कली नहीं जिसमें मराग मधुरस विकास और सुगंध का अभाव बताकर मुंह मोड़ने का मौका मिले। यह प्रेम मिठाई ऐसे भय रूपी हलवाई की बयानी है जिसमें ना तो घृत है ना चीनी, किंतु संसार भर की मिठास इसके सामने झक मारती है। खाते चले जाइए किंतु पेट भरने का नाम नहीं। सभी मनुष्य परस्पर एक दूसरे से छीन कर खाते हैं, किंतु सब यही झूठी नहीं होती। हृदय काश में जब प्रेम की बिजली चमकने की होती है तब पहले आनंद की करक से कान के पर्दे फट जाते हैं, जिससे वह प्रेमियों की निंदा सुनने के लिए लाचार हो जाता है। प्रेम के लिए किसी शिक्षक अथवा पट्टी की आवश्यकता नहीं। इसकी पाठशाला में तो बड़े बड़े प्राध्यापक एक दूध मुहे शिशु से प्रेम की शिक्षा पाते हैं, किंतु इस प्रेम मंदिर की ऊंची अट्टालिका का स्तंभ भय है। प्रेम सरोवर के पंकज का विकास करने का सूर्य का नाम भय है। जड़ चेतन बालक बुद्धि चींटी हस्ती मूर्खाधिराज भट्टाचार्य ये सब कुछ इस रज्जु में बंधे हैं। इस प्रेम को निकाल देने से संसार निस्सार हो जाता है। पुण्य प्रेम पीयूष की एक बूंद से संसार रूपी हलाहल का समुद्र विलीन हो जाता है। फिर तो अमृत ही अमृत है। इस विश्व विटपी का फल अमृत फल है। पुराकृति पुण्य पुंज के प्राकर्म वह प्रेम फल प्राप्त होता है। प्रेम को मनुष्य पागल कहे तो क्या कहे।